पृष्ठ संख्या 24। अभिषेक। इस रूपक में सुग्रीव के अभिषेक का वर्णन किया गया है, अतः इसका नाम अभिषेक किया गया है। रामायण की कथा में कतिपय प्रतिभा परिवर्तनों के साथ लोक के सम्मुख राम के उदात्त चरित्र की अवतारणा की गई है। इसकी कथा का आधार वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड के उत्तरार्ध की कथा है। कथा बहुत चर्चित है एवं सकल जन विदित है। रामायण की मूल कथा में परिवर्तन भी किया गया है। सुग्रीव और बाली का द्वंद्व युद्ध एक ही बार प्रदर्शित किया गया है। प्रचलित कथा के अनुसार नल नील के द्वारा समुद्र बंधन हुआ है, किंतु महाकवि ने भयभीत वरुण देव के द्वारा समुद्र के जल को सुखाकर बीच से मार्ग दिया है। भास के अनुसार जटायु से समाचार जानकर हनुमान ने समुद्र पार किया था। राम से सुग्रीव के मिलने से पूर्व भेंट नहीं होती है, तारा उसे मरते हुए नहीं देखती है। इस नाटक में 6 अंक हैं। सीता हरण के बाद की कथा इसमें ली गई है। पृष्ठ संख्या 25। प्रतिज्ञा यौगंधरायण। यह नाटक स्वप्नवासो दत्तम का पूरक है, अतः इसका विशिष्ट परिचय प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। यह एक सफल रूपक है। इस नाटक में 4 अंक हैं। इसकी शैली हृदय आकर्षक है। कथा के विन्यास में किसी प्रकार का गतिभंग नहीं है। सूच्य भागों का सन्निवेश अतिशय लावण्याधान से अंकित किया गया है। मनोवैज्ञानिक ढंग पर कर्तव्य की कसौटी पर विशुद्ध चरित्र इसमें दिए गए हैं, जिनका आद्यंत निर्वाह करने में महाकवि सर्वथा सफल है। आत्मविश्वास का संबल नीति के प्रसार में आरोह अवरोह क्रम से सन्निविष्ट है। इस नाटक का नाम इसकी विशेष घटनाओं के आधार पर दिया गया है। प्रद्योत ने वत्सराज को बंदी बना लिया है। इसकी अवगति होते ही आमात्य यौगंधरायण प्रतिज्ञा करता है कि यदि वत्सराज को मैं नहीं छुड़ा लेता तो मेरा नाम यौगंधरायण नहीं। इस प्रतिज्ञा के सफल होने से पूर्व ही नवीन घटना प्रस्तुत होती है। उदयन बंदीगृह से वासवदत्ता को लेकर ही भागना चाहता है। इस वृत्तांत को जानकर वह पुनः प्रतिज्ञा करता है कि जिस प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था, उसी प्रकार वासवदत्ता का हरण नहीं कराया तो मेरा नाम यौगंधरायण नहीं। इन प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त वह प्रतिज्ञा करता है कि घोषवती वीणा भद्रवती हस्तिनी एवं वासवदत्ता का हरण नहीं करा देता तो मेरा नाम यौगंधरायण नहीं। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के कारण इसका नाम प्रतिज्ञा यौगंधरायण है। रूपक की कथा वस्तु का मूल गूढ़ार्ध्य की बृहत कथा में वर्णित उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा है। कथा सरित सागर में रूमरवान और यौगंधरायण मंत्रियों के नाम हैं, जो यहाँ भी गृहीत है। राजा की वासुकी द्वारा दी गई घोषवती वीणा के मधुर स्वरों से वह मदोन्मत्त हाथियों को अपने अधीन करता था। पृष्ठ संख्या 26। किसी उच्च कुल की कन्या के साथ इसका विवाह संपन्न कराना चाहता था। वासवदत्ता गुण संपन्न एवं उच्च कुल प्रसूता कन्या थी। महासेन प्रद्योत के विरोधी होने से उदयन से वासवदत्ता का विवाह संभव नहीं था। उदयन वनों में हाथियों को अधीन करने के लिए विचरण करता रहता था। प्रद्योत ने सोचा कि उदयन को पकड़ कर ले आने के बाद वासवदत्ता का शिक्षक बनाकर उसके साथ प्रेम हो जाने पर उसको अपना अधिकृत जामाता बना लूंगा। एक नील हस्ती के समान कृत्रिम हाथी का निर्माण कराकर योद्धाओं को उसमें छिपाकर विंध्याचल के अरण्य में रखवा दिया। नीलगिरी हस्ती की सूचना प्राप्त कर उसको पकड़ने के लिए जाता है और वह बंदी बना लिया जाता है और संगीत शिक्षक के रूप में रहने को बाध्य होता है। दोनों का प्रेम प्रगतिशील होता है। यौगंधरायण रुम्णवान आदि मंत्रियों पर राज्य रक्षा का भार समर्पित कर वसंतक के साथ वत्सराज को मुक्त कराने के लिए चल पड़ता है और उदयन को वासवदत्ता के साथ ले आता है। महाकवि भास के नाटक में अनेक परिवर्तनों के साथ अतिशय रोचक शैली में इसे प्रस्तुत किया गया है। पूर्व प्रदर्शित प्रतिज्ञाएं कवि के प्रतिम कल्पना प्रसूत हैं। उदयन के उदात्त चरित्र की रक्षा के लिए प्रद्योत की सेना के साथ उदयन युद्ध करता है। उदयन का घोड़ा एक पैर पर खड़ा हुआ थक कर गिर जाता है और सैनिकों से बंदी बना लिया जाता है। महाकवि की यह कल्पना नाटक की दृष्टि से अतिशय महत्वाधायक है। महाकवि की कल्पना के अनुसार हंसक उदयन के साथ जाता है और लौटकर बंदी बनाने की सूचना देता है। कवि की कल्पना के अनुसार उदयन को शक्तिशाली और सेना को शक्तिहीन सिद्ध किया गया है। यौगंधरायण जादूगर के रूप में अपना वेश परिवर्तन नहीं करता, अपितु द्वैपायन व्यास से प्रदत्त चमत्कारी वस्त्र के आधार पर वेश परिवर्तन होता है। नाटककार ने रुमड़वान और वसंतक को भी सहायक के रूप में भेजा है और उदयन के साथ वासवदत्ता के प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है, जिससे कथा में जीवन शक्ति का संचार होता है। पृष्ठ संख्या 27। यह एक सफल तथा उन्नत कोटि का नाटक है। इस नाटक की रचना में महाकवि की कवित्व शक्ति निखार पर व्यक्त होती है और महाकवि को उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करती है। अब उनके शेष नाटकों का परिचय प्रदान कर स्वप्नवासव दत्तम का नाटकीय वैशिष्ट्य प्रस्तुत किया जाएगा। अविमारक। सौवीर राजपुत्र अविमारक का चरित्र इस रूपक में वर्णित किया गया है। विष्णुसेन नाम होने पर अविरूपधारी असुर को मारने से यह अविमारक नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रकरण रूपक में 6 अंक हैं। इसकी कथा कवि कल्पना प्रसूत है। राजकुमार अविमारक और राजा कुंतीभोज की पुत्री कुरंगी की प्रेम लीला का वर्णन इसमें उपलब्ध है। अविमारक काशीराज की पत्नी सुदर्शना से अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सुदर्शना ने इसे सौवीर राज की पत्नी अपनी बहन सुलोचना को दे दिया था। अतिशय क्रोधी भार्गव के शाप से चांडालत्व प्राप्त सौवीर राज अपने परिवार के साथ प्रच्छन्न रूप में कुंतीभोज की नगरी में निवास करता था। कुंतीभोज की पुत्री कुरंगी उद्यान में घूमने गई थी, वहीं उन्मत्त हाथी से अविमारक ने इसकी रक्षा की थी। इस पराक्रम प्रदर्शन से कुरंगी और अविमारक में प्रेम हो जाता है। काशीराज का दूत कन्या मांगने आता है। सौवीर राज और काशीराज दोनों ही कुंतीभोज के बहनोई थे। वह दुविधा में पड़ जाता है। काशीराज के दूत का वह प्रत्याख्यान नहीं करता। कुरंगी और अविमारक की स्थिति परस्पर प्रेम के कारण दयनीय हो जा रही है। उसकी सखी नीलनिका धात्री के साथ अविमारक का पता लगाने निकल पड़ती है और अविमारक को अंतःपुर में आने का आमंत्रण दे आई। अपने पराक्रम पर विश्वास करता हुआ उसने इसे स्वीकार कर लिया। अविमारक अंतःपुर में छिपकर प्रविष्ट होता है। कुरंगी सो रही है। अविमारक उसी के पास बैठा है। अविमारक उसका आलिंगन करता है। चरित्र पत्तन के भय से वह कांप जाती है, किंतु वह उसे शांत कर शयनागार में ले जाता है। पृष्ठ संख्या 28। इस प्रकार एक वर्ष प्रेम पूर्वक व्यतीत होता है। राजा सूचना से अवगत होता है। पकड़ाने के भय से वह निकल भागता है। वियोग से व्यथित वह आत्मघात के विषय में सोचता है। आत्महत्या के प्रसंग में सस्त्रीक विद्याधर से भेंट होती है। सभी बातें ज्ञात कर वह एक अंगूठी देता है, जिसे बाएं हाथ में धारण करने पर वह अदृश्य और दाएं हाथ में धारण करने पर दृश्य हो सकता है। इस अंगूठी के बल पर उसने पुनः प्रविष्ट होने का निश्चय किया। वियोग संतप्ता कुरंगी नलिनीका के साथ राजप्रसाद में बैठी है। अविमारक प्रदूषक के साथ वहां पहुंचता है। अविमारक अत्यधिक प्रसन्न है कुरंगी के दर्शन से। नलिनिका के जाने पर कुरंगी गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करना चाहती है। मेघ गर्जन से भयभीत कुरंगी का अभिमारक आलिंगन करता है। धात्री से ज्ञात होता है कि काशी राजकुमार जयवर्मा अपनी माता सुदर्शना के साथ कुरंगी से विवाह करने के लिए कुंती भोज के यहाँ आते हैं। सौ वीर राज के उन्हीं के राज्य में निवास करने की सूचना भी प्राप्त होती है। सौ वीर राज मिलता है किंतु उसका पुत्र नहीं मिलता। इस समय देवर्षि नारद उपस्थित होते हैं और अंतःपुर में कुरंगी के साथ गांधर्व विवाह पूर्वक निवास की सूचना देते हैं। कुंती भोज देवर्षि के निर्देशानुसार जयवर्मा के साथ कुरंगी की छोटी बहन सुमित्रा के साथ विवाह से चिंता मुक्त होता है। शास्त्रीय दृष्टि से इसमें न्यूनता होने पर भी यह प्रकरण रोचक है। प्रतिमा, इस नाटक की कथा वस्तु इक्ष्वाकुवंशीय मृत राजाओं के प्रतिमा निर्माण की घटना से ली गई है। दशरथ की प्रतिमा को देखने से ही उनकी मृत्यु का परिज्ञान हो जाता है। सभी घटनाएं इसी पर आधारित हैं। राम के वनवास का बोध और भरत को इसी घटना से होता है। इस नाटक में 7 अंक हैं। राम के युवराज पद पर अभिषिक्त होने से आरंभ कर 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के बाद अयोध्या में लौटने तक की घटना इसमें सन्निविष्ट है। राम के राज्याभिषेक के बाद यह नाटक समाप्त होता है। इस नाटक की कथा रामायण से ग्रहित है। नाटकीयता और रस आदि की दृष्टि से इसमें परिवर्तन किया गया है।